नमस्कार, संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौड़। 14 फरवरी 2020 के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनिए, इसराइल और फलस्तीन के बीच विवाद के निपटारे के लिए संवाद स्थापित करने पर जोर, चीन में कोरोना वायरस मरीजों की देखभाल में जुटे 1500 स्वास्थ्य कर्मी संक्रमण का शिकार हुए, यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने जारी किए नए दिशा निर्देश, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 13वां सम्मेलन शनिवार से गुजरात के गांधीनगर में, हिंसक संघर्षों के बाद शांति प्रक्रियाओं में बाल संरक्षण को भी शामिल करने की पुकार, और गुरुवार को मनाया गया विश्व रेडियो दिवस। सुनिएगा अतीत में यूएन के मंच से उभरी भारत की कुछ ऐतिहासिक आवाजें। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। साथ ही एंड्रॉयड और आईफोन डिवाइस में आप हमारा न्यूज ऐप डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिए यूएन न्यूज रीडर, जिसमें बाईं ओर भाषाओं की सूची में आपको हिंदी भी नजर आएगी। अब समाचार विस्तार से। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि मध्य पूर्व क्षेत्र में बढ़ता तनाव और अस्थिर हालात इसराइल और फलस्तीन के बीच दशकों पुराने विवाद को जल्द सुलझाने और शांति वार्ता की मेज पर फिर लौटने की जरूरत बयां करते हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इसराइल फलस्तीनी विवाद के निपटारे के लिए एक नई योजना सुझाई थी, जिस पर मंगलवार को सुरक्षा परिषद में चर्चा हुई। इस चर्चा में फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और यूएन में इसराइल के दूत डैनी डैनन ने भी हिस्सा लिया। ज्यादा जानकारी के साथ यूएन हिंदी न्यूज के प्रमुख महबूब खान।
यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने सुरक्षा परिषद चैम्बर में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और इसराइली दूत की उपस्थिति में दो राष्ट्र समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र का समर्थन दोहराया। उन्होंने कहा कि ये समय संवाद, मेल मिलाप और तर्क के लिए है। महासचिव ने इसराइली और फिलिस्तीनी नेताओं से आग्रह किया कि न्याय संगत व स्थायी शांति के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी इच्छा शक्ति दिखाएं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसका समर्थन करना होगा। मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया में यूएन के विशेष समन्वयक निकोलाय म्लादेनोफ ने इस अवसर पर बताया कि इस प्रस्तावित योजना को फिलिस्तीनी सरकार, लीग ऑफ अरब स्टेट्स, इस्लामिक सहयोग संगठन और अफ्रीकी संघ के कुछ सदस्य देशों ने खारिज कर दिया है।
Today is the time to hear proposals on how to move the process forward and to find a way back.
निकोलाय म्लादेनोफ कह रहे थे कि आज उन प्रस्तावों को सुनने का समय है कि इस प्रक्रिया को आगे किस तरह बढ़ाया जाए और आपसी सहमति के साथ मध्यस्थता के फ्रेमवर्क के रास्ते पर लौटा जाए, जिससे सार्थक वार्ता शुरू हो सके। निकोलाय म्लादेनोफ के शब्द। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद सुलझाने के लिए कुछ ही सप्ताह पहले एक योजना पेश की थी। इसके तहत पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलम में इसराइली बस्तियों को कानूनी मान्यता दिए जाने के अलावा पश्चिमी तट के कुछ इलाकों पर इसराइल द्वारा कब्जा किए जाने का उल्लेख है। अन्य प्रस्तावों के अलावा यरूशलम को इसराइल की अविभाजित राजधानी बनाने का भी सुझाव है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भरोसा जताया है कि दुनिया भर में देश कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए पहले से कहीं बेहतर ढंग से तैयार हैं। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी जरूरतमंद देशों में लैब परीक्षण की क्षमता पुख्ता करने के लिए मदद दे रही है और इस संबंध में पिछले एक हफ्ते में हालात बेहतर हुए हैं। इस वायरस का आधिकारिक नाम COVID-19 है और सबसे ज्यादा प्रभावित चीन के हुबेई प्रांत में जांच के तरीके को अब बदला गया है। लैब में परीक्षण के बाद 47,500 मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि क्लिनिक में सीटी स्कैन के जरिए 16,426 मामलों का पता लगाया गया है। 24 अन्य देशों में 505 मामलों का पता चला है और 2 लोगों की मौत हुई है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने आंकड़े जारी कर बताया कि 1700 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी इस वायरस से संक्रमित हुए हैं और 6 की मौत हो गई है। यूएन एजेंसी के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रेयेसस ने बताया कि यह स्पष्ट है कि स्थिति लगातार बदल रही है। चीन में स्वास्थ्यकर्मी और अन्य कर्मचारी बिना सोए कठिन हालात में लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि जितनी जल्दी हो सके हमारे पास सटीक आंकड़े उपलब्ध हों, ताकि वैश्विक स्तर पर जवाबी कार्रवाई को समर्थन दिया जा सके। यूएन एजेंसी के प्रमुख के मुताबिक स्वास्थ्यकर्मी ही वो कड़ी हैं जो स्वास्थ्य प्रणाली व महामारी से निपटने के प्रयासों को जोड़ती है। इसलिए ये जानना बेहद अहम होगा कि किन हालात में ये स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुए हैं। साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अस्पताल में मरीजों की देखभाल में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए नए दिशा निर्देश बनाए हैं, जिन्हें सभी देशों को मुहैया कराया गया है। इससे पहले गुरुवार को एक यूएन विशेषज्ञ ने कहा था कि चीन से बाहर संक्रमण फैलने के मामले उतनी बड़ी संख्या में नहीं है जिनकी पहले आशंका जताई गई थी। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर संधि यानी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज पर संधि के तहत 13वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP13 सम्मेलन शनिवार से गुजरात की राजधानी गांधीनगर में शुरू हो रहा है। 22 फरवरी तक चलने वाले COP13 में 110 देशों के लगभग 1200 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और तेजी से लुप्त होती प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के समाधान की तलाश करेंगे। दिल्ली से एक रिपोर्ट के साथ अंशु शर्मा।
प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के समझौते यानी CMS के अनुसार दुनिया भर की लगभग 10 लाख जीव प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। COP13 के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए वर्तमान COP अध्यक्ष और भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया,
जो थीम है वो अतिथि देवो भव के पर निर्भर है। दीज माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द वर्ल्ड एंड टुगेदर वी वुड वेलकम देम एट होम। पृथ्वी उनका घर है और किसी भी देश में जाए उनका स्वागत है। सृष्टि को हम बता रहे, पेड़ पौधे पशु पक्षी प्राणी जलचर सभी हमारे हिस्सा है प्रकृति का।
वर्तमान COP अध्यक्ष और भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के शब्द। वहीं संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज यानी प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर समझौते की कार्यवाहक कार्यकारी सचिव एमी फ्रेंकल ने चेतावनी के अंदाज में कहा,
विज्ञान बता रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। प्रवासी प्रजातियों की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक कार्रवाई की जरूरत है। हाल के अध्ययन से स्पष्ट है कि अगर हम अपनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाते हैं तो 1 लाख प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है। प्रवासी प्रजातियों और उनके आवास की रक्षा पर हो रहे इस वैश्विक सम्मेलन के सामने ये वास्तव में एक बड़ी चुनौती है।
कार्यवाहक कार्यकारी सचिव एमी फ्रेंकेल के शब्द। CMS COP13 का उच्च स्तरीय खंड रविवार 16 फरवरी को होगा, जिसमें 5 महाद्वीपों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शिरकत करके वन्य जीव प्रजातियों पर उभरते खतरों पर चर्चा करेंगे। भारत के पर्यावरण मंत्रालय में संयुक्त राष्ट्र की समस्त CMS गतिविधियों के फोकल पॉइंट सौमित्रो दास गुप्ता ने बताया,
ऐसे मुद्दों पर चर्चा होगी जिनका प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर गहन प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, समुद्री प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, ये सभी मुद्दे उठाए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण विषय होगा कनेक्टिविटी, जो इस COP की थीम भी है। कनेक्टिविटी के सभी प्रमुख मुद्दों, परिदृश्यों के बीच तालमेल, देशों के बीच तालमेल और कन्वेंशनों के बीच तालमेल, सभी पर विस्तार से बातचीत होगी।
ये थे भारत के पर्यावरण मंत्रालय में संयुक्त राष्ट्र की समस्त CMS गतिविधियों के फोकल पॉइंट सौमित्रो दास गुप्ता। सम्मेलन के अंत में गांधीनगर घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, जिसके तहत संरक्षण की CMS सूची में भारत की 3 प्रजातियों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियन एलिफेंट और बंगाल फ्लोरिकन समेत दुनिया भर के वन्य जीवों की 10 लुप्त प्राय प्रजातियों को जोड़े जाने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय बैठक वर्ष 2020 को जैव विविधता के विशेष वर्ष के तौर पर स्थापित करेगी। इसका समापन अक्टूबर में चीन के कुनमिंग शहर में 15वें जैव विविधता सम्मेलन के साथ होगा। उस सम्मेलन में अगले दशक के लिए जैव विविधता पर एक नई वैश्विक रणनीति अपनाई जाएगी।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने हिंसक संघर्षों के बाद शांति प्रक्रियाओं में बाल संरक्षण को शामिल करने की अहमियत पर जोर दिया है। विश्व भर में 25 करोड़ से ज्यादा युवा हिंसा प्रभावित देशों में रहने को मजबूर हैं, जहां अस्पतालों और स्कूलों पर हमले होते हैं और बच्चों के मानवाधिकारों के हनन के मामले लगातार सामने आते हैं। 12 फरवरी को बाल सैनिकों के इस्तेमाल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सुरक्षा परिषद में एक उच्च स्तरीय चर्चा हुई। इसमें यूएन प्रमुख ने कहा कि अस्पतालों और स्कूलों पर हमले बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन रक्षक सेवाओं तक पहुंच को रोकते हैं और परिवारों को घर छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। उन्होंने दुख जताया कि युद्ध क्षेत्र में बच्चों को यौन हिंसा, अगवा किए जाने और बाल सैनिकों के तौर पर भर्ती किए जाने जैसे जोखिमों का सामना करना पड़ता है।
It is our fundamental duty as leaders to do everything in our power to protect children,
बच्चे जो हमारा भविष्य हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें हर संभव प्रयास करने चाहिए। युद्ध की अराजकता और पागलपन से उनका कोई मतलब नहीं है। यूएन प्रमुख के शब्द। इस अवसर पर मध्यस्थकारों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें हिंसक संघर्ष के हर चरण में बच्चों की जरूरतों और अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इन गाइडलाइंस के जरिए मध्यस्थकार व वार्ताकार हिंसक संघर्ष का बाल अधिकारों के नजरिए से विश्लेषण कर पाएंगे। साथ ही सुरक्षा परिषद ने एक वक्तव्य भी जारी किया है, जिसमें दोहराया गया है कि सशस्त्र संघर्षों में बच्चों का संरक्षण, टिकाऊ शांति और संघर्ष को सुलझाने के लिए व्यापक रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। विश्व में वैज्ञानिक शोधकर्ताओं की कुल संख्या में महिलाएं 30% से भी कम हैं, जो दर्शाता है कि वैज्ञानिक जगत में महिलाओं व लड़कियों के लिए हालात में अब भी असमानता कायम है। विज्ञान से जुड़े क्षेत्रों में शिक्षा और रोजगार के लिए महिलाओं व लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से मंगलवार को विज्ञान में महिलाओं व लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। पूरी जानकारी के साथ एक बार फिर महबूब खान।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने इस अवसर पर अपने संदेश में विज्ञान में व्याप्त लैंगिक असमानता का अंत करने का संकल्प लेते हुए कहा कि लिंग संबंधी घिसी पिटी धारणाओं को दूर करना इस दिशा में एक जरूरी कदम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विज्ञान और गणित विषयों में लड़के व लड़कियां एक जैसा ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उच्चतर शिक्षा में लड़कियां बेहद कम संख्या में विज्ञान संबंधी विषयों में पढ़ाई करती हैं। महासचिव ने कहा,
To rise to the challenges of the 21st century, we need to harness our full potential.
अंतोनियो गुटेरेश कह रहे थे कि हमें 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी पूर्ण क्षमताएं विकसित करनी होंगी। इसके लिए लिंग आधारित पूर्वाग्रहों को तोड़ना जरूरी होगा। इसका मतलब है कि महिला वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को करियर में ज्यादा सहायता देनी होगी। महासचिव अंतोनियो गुटेरेश के शब्द। संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन की कार्यकारी निदेशक पुम्जिले म्लाम्बो नगुका ने इस अवसर पर अपने वक्तव्य में कहा कि विज्ञान और नवाचार से जीवन बदल कर रख देने वाले फायदे हो सकते हैं, विशेषकर उनके लिए जो कतार में सबसे पीछे खड़े हुए हैं, मसलन दूर दराज के क्षेत्रों में रह रही महिलाएं व लड़कियां और विकलांग वृद्धजन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के आंकड़े दर्शाते हैं कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स यानी स्टेम विषयों में महिलाओं द्वारा प्रकाशित शोध की संख्या कम है, उन्हें अपने शोध का मेहनताना भी कम मिलता है और पुरुष सहकर्मियों की तुलना में वे करियर में उतना आगे नहीं बढ़ पाती।
रेडियो एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो संवाद का अनूठा मंच प्रदान करता है। विश्व स्तर पर रेडियो सबसे अधिक उपयोग में लाए जाने वाला संचार माध्यम है और इसी कारण उसमें सामाजिक विविधता को आकार देने की अपूर्व क्षमता मानी जाती है। इसी महत्व को देखते हुए यूनेस्को के सदस्य देशों के अनुमोदन पर 2012 में यूएन महासभा ने हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। आइए विश्व रेडियो दिवस के मौके पर याद करते हैं संयुक्त राष्ट्र के मंच से उभरी भारत की कुछ ऐतिहासिक आवाजें। अंशु शर्मा की ये खास रिपोर्ट।
The United Nations headquarters in New York with the first change in the flags of the 55 countries represented. The British flag of India comes down symbolizing the end of an era.
15 अगस्त 1947 को जब भारत को आजादी मिली तो न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय में स्वतंत्र भारत के प्रतिनिधि पीपी पिल्लई की देखरेख में ब्रिटिश राज का झंडा उतारकर भारत का झंडा फहराया गया।
Let us hope that this flag will bring to all the people of India a message of freedom and of comradeship and to the peoples of the world a message।
और यहीं से शुरू हुआ संयुक्त राष्ट्र में भारत की सदस्यता का सफर।
Then the most energetic human torpedo put out of existence the most ancient scripture of the east the Gita। Is there anything that has been devised or that could be devised by scientists।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 14वें और 15वें प्लेनरी बैठक में भाषण देते भारत के प्रतिनिधि सर रामा स्वराई मुदलियार, दुनिया को अहिंसा का रास्ता दिखाने वाले महात्मा गांधी की जब 30 जनवरी 1948 को हत्या हुई, उस हादसे की गूंज संयुक्त राष्ट्र में भी सुनाई दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भावुक हृदय से महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी।
To which he consecrated his entire life. A great tragedy has overtaken us, the greatest perhaps in Indian history in recent years. If I may venture to say so, the world has lost its tallest man, judged by all moral standards.
भारतीय प्रतिनिधि गोपाला स्वामी अयंगार के शब्द। रेडियो एक ऐसा मंच है जिस पर आवाजें अमर हो जाती हैं। ऐसी ही एक आवाज है 1947 से 48 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारतीय प्रतिनिधि रही हंसा मेहता की। हंसा मेहता की दूरदर्शिता से ही मानवाधिकारों की व्यापक सार्वभौमिक घोषणा में फेरबदल कर उसे जेंडर सेंसिटिव बनाया गया। हंसा मेहता के प्रस्ताव पर ही जन्म के समय सभी पुरुष स्वतंत्र और समान होते हैं वाक्यांश को बदलकर बनाया गया जन्म के समय सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान होते हैं।
आई कैनॉट से दैट आई फील एज एक्सेलरेटेड एज आई डिड when we adopted the draft Universal Declaration of Human Rights. We have not found solution on some of the fundamental points.
UN मानवाधिकार आयोग के छठे सेशन की 201वीं बैठक में नियम पत्र पर चर्चा करती हंसा मेहता के शब्द।
Mr. President,
संयुक्त राष्ट्र का 86वां प्लेनरी सेशन और 1946-48 वे 1952-53 में संयुक्त राष्ट्र में भारतीय डेलीगेशन का प्रतिनिधित्व करने वाली विजय लक्ष्मी पंडित का भाषण।
लूमिंग ओमिनसली ओवर द होल सिचुएशन इज द फैक्ट दैट द ग्रेट पावर्स इंस्टेड ऑफ कमिंग क्लोजर टुगेदर आर ड्रिफ्टिंग फर्दर अपार्ट। देयर इज टेंशन सस्पेंस एंड एंग्जायटी एंड एन अनईजी अवेयरनेस दैट थिंग्स आर परहैप्स moving towards some new and annihilating disaster for mankind and that
Vijay Lakshmi Pandit 1953 mein Sankt Rash Mahasabha ke adhyaksh pad par chuni jane wali pehli mahila thi. Sankt Rash Mukhyalaya mein Bharat ke pad chinhon ke ye nishan ye sabhi lamhe jo Sankt Rash Radio ne na keval qaid kiye balki aane wali peedhi ke liye unko sanjo kar rakha. फिर जैसा कि विश्व रेडियो दिवस पर वर्तमान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा, रेडियो की शक्ति को पहचाने और विविधता फैलाने में बेहतर शांतिपूर्ण और समावेशी विश्व का निर्माण करें।
ये थी अंशु शर्मा की खास रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।